आप में से कौन कौन है जो लास्ट क्लास में नहीं थे? कौन कौन नए हैं जो पहली बार आ रहे हैं? शिवम तो आप बता सकते हैं।
जयदीप है, नए हैं, और
ओके
शिवम सुवारे पिछले क्लास में थे लेकिन उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं था तो सुने नहीं थे, तो ये भी नए ही हैं। और रोहिणी है, और शायद कुछ प्रभु जी के भी दोस्त हैं, शिवम प्रभु जी के दोस्त।
ओके मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को शायद। सो दिस इज द सेशन, प्रैक्टिकल वैदिक सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो हम जस्ट समराइज करके देखेंगे, उसके बाद फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। और जहाँ भी आपको कुछ इन केस कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्लास के बाद में भी पूछ सकते हैं। तो इस सेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बस मनुष्य और जानवरों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, एंड हाउ ह्यूमन लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनिमल लाइफ। उसके बाद हम देखते हैं कि मानव प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जीवन की जो समस्याएं हैं, कौन कौन सी जीवन की समस्याएं हैं और उनके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, और क्या टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, क्या परमानेंट सॉल्यूशंस हैं, और वैदिक शास्त्र कैसे परमानेंट सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं। और फिर हम लोग जब प्रश्न करते हैं कि वेद पे विश्वास क्यों करना है, तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि वेदों में किस प्रकार से विज्ञान दिया गया है, वेदों में किस प्रकार से हायर साइंस दिया गया है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेद कैसे भारत की हिस्ट्री को डिनोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेदाज आर नॉट मिथोलॉजी, वेदाज आर हिस्ट्री। वेद वास्तविकता में इतिहास है। वेद का मतलब कोई फेयरी टेल या नानी दादी की कहानियां नहीं है, वेद जो है वो ऐतिहासिक तथ्य है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वैदिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त होना चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट एक्चुअली भगवत गीता के प्रिल्यूड कॉन्सेप्ट है। भगवत गीता के कॉन्सेप्ट को समझने के पहले हम जस्ट कुछ फाउंडेशन तैयार करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के द्वारा, इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक और इसके बाद में एक और टॉपिक आता है, एक दो तीन टॉपिक करने के बाद फिर हम भगवद गीता में वेंचर कर सकते हैं, फिर हम भगवद गीता को ठीक से समझ पाएंगे। जैसे सर्च फॉर हैप्पीनेस, हर व्यक्ति इस संसार में जो भी कार्य करता है उसके पीछे एक ही कारण होता है कि वो सुख प्राप्त करना चाहता है। तो हो सकता है कोई बोले कि नहीं, हम तो पैसा चाहते हैं, परंतु हम पैसा तभी चाहते हैं जब पैसे से सुख की प्राप्ति होती है। अगर पैसा हमें सुख प्रदान नहीं करता है तो फिर हम ऐसा सुख नहीं चाहते, ऐसा पैसा नहीं चाहते, क्योंकि वास्तविकता में हर व्यक्ति सुख की तलाश कर रहा है। सर्च फॉर हैप्पीनेस इज द मोटिव ऑफ एवरीवन। हर व्यक्ति का ये लक्ष्य है कि सुख को कैसे प्राप्त किया जाए। अभी उसके लिए लोग अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, अलग अलग गेम्स जो हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, रेसिंग हो, सारे के सारे गेम्स अल्टीमेटली व्यक्ति सुख की तलाश करता है। लोग भी इसीलिए देखने जाते हैं, क्रिकेट देखने में टाइम देते हैं 6 घंटे, आईपीएल 50 ओवर का मैच, टेस्ट मैच, इन सब में लोग भी जाते इसीलिए हैं कि उनको लगता है कि कुछ खुशी मिलेगी, कुछ नई चीज मिलेगी। कुछ कुछ लोग टाइम सुख प्राप्त करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं, तम्बाकू, सिगरेट, नशा, इनका सहारा लेते हैं। वो भी अल्टीमेटली वो भी खुशी चाहते हैं, क्योंकि उनको जब नशा करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनका दुख खत्म हो गया है, तो वो सोचते हैं कि हम इतने हल्के हो गए कि हम हवा में उड़ सकते हैं। और इस तरह से सपने देखते देखते वो वास्तविक रियलिटी को भूल जाते हैं, अपने आप को एक इमेजिनरी रियलिटी में रखते हैं। तो वो भी एक स्थान है सुख प्राप्त करने का। कुछ लोग नाइट क्लब्स में जाते हैं और नाइट क्लब में जाके डांस करते हैं, पब में जाते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उछलते कूदते हैं, उसका भी लक्ष्य यही होता है कि किस प्रकार से सुख मिलना चाहिए। कुछ लोग अजब अजब तरीके के गेम खेलते हैं, एडवेंचर करते हैं, अपनी जान तक के लिए तैयार हो जाते हैं, जान को रिस्क में डालने के लिए। इसका भी यही कारण होता है कि कैसे सुख प्राप्त करें। जैसे अलग अलग एडवेंचर आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति ने चलते चलते बाइक को रोक दिया और एक दो लोग बाइक में बैठे हैं, इस प्रकार से जा रहे हैं। और साथ साथ एक पैराशूट, जस्ट मिनट, एक तो कुछ लोग पैराशूट में जा रहे हैं, पैराशूट में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब भी सुख प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके के हेयर कट बनाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, गजनी कट है, किसी का वॉलीबॉल फुटबॉल, किसी ने चेहरा बनाया है, किसी ने चूहा बनाया, किसी ने राक्षस बनाया, किसी ने मूछ बनाया। तो लोग यूनिक बनने के लिए तैयार होते हैं, अलग अलग ड्रेस में यूनिक बनने का प्रयास करते हैं, खुशी की तलाश। फाइनली यही है खुशी की तलाश। अगर हम इन सब खुशी के जितने भी तरीके हैं उन सबको अगर हम काउंट करें, काउंट करने से एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट आता है कि खुशी का मतलब होता है कि कौन कौन सी फैसिलिटी को इम्प्रूव किया है, किस फैसिलिटी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं उसको खुशी बोला जाता है। अगर किसी को खाना अच्छे से मिल जाए, ईटिंग खाने के लिए अच्छे से मिल जाए, तो लोग खुश हो जाते हैं। जब ऐसी थाली हम देखते हैं तो स्क्रीन पे ऐसी थाली देख के लोग को सोचते हैं कि ऐसी थाली सामने आ जाए। हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे कॉलेज में, तो हम लोग हर सैटरडे को एक गार्डन में, हर सैटरडे तो नहीं, बीच बीच में गार्डन्स में घूमते थे कि कहाँ पे कोई नई शादी हो रही है, और जहाँ पे कोई नई शादी हो, इस तरह से कपड़े पहन के जाते थे कि हम जैसे शादी के अंदर घुस सके। तो जब हम शादी देखते थे होती हुई, तो उसके पंडाल के अंदर घुस जाते थे, कॉलेज के इनिशियल दिन की बात है, अंदर घुस जाते थे और भोजन करके कुछ देर वहां पे कुर्सी पे बैठ के वापस आ जाते थे। तो हर व्यक्ति अच्छा भोजन चाहता है, स्पेशली जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनको समझ में आता है कि अच्छा भोजन कितना बड़ी बात है। तो अगर किसी को अच्छा खाने मिले तो वो खुश हो जाता है। उसके बाद दूसरा खुशी होती है सोना, हर व्यक्ति सोना चाहता है। किसी को अगर, एक्चुअली ऐसा बोला भी जाता है कि जो बिस्तर होता है, बेड होता है, वो हमें खींचता है अपनी तरफ। इसलिए हम क्या फॉलो करते हैं, जहां पे हम लोग रहते हैं तो सुबह उठने के बाद हम पूरे बिस्तर को घड़ी लगा के अलग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिस्तर बिछा रहता है तो आदमी को जब मौका मिलता है आके सो जाता है, आलसी बन जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के सोने की आदत होती है। हम लोगों के कॉलेज में बच्चे बहुत सोते थे, सैटरडे सोते थे, संडे पूरा दिन भर सोते रहते थे, संडे को खाना भी नहीं खाते थे। तो व्यक्ति को सोना अच्छा लगता है। उसके बाद तीसरा, पुरुष स्त्री के बीच का जो संबंध है उसके पीछे पूरा संसार भागता है, और किस प्रकार से अपोजिट सेक्स के साथ संबंध बन सके उसके लिए लोग पूरा लगातार प्रयास करते रहते हैं। पहले ये प्रयास कैरियर जॉब के समय चालू होता था, आजकल ये प्रयास स्कूल कॉलेज से चालू हो जाता है। तो इसका भी मतलब है कि लोग इसमें भी हैप्पीनेस को प्राप्त करते हैं। और चौथा, हर व्यक्ति को डर होता है कि उसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए, उसके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने आप को अटैक से बचाने का प्रयास, अपने आप को डिफेंड करने का प्रयास। तो बेसिकली इन चार चीजों में अगर देखा जाए तो बाकी सब चीजें आ जाती हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। अगर कोई इन चार चीजों को अच्छे से कर पाता है, दैट मीन्स वो खुशी है, वो खुश है। हैप्पीनेस का मतलब होता है खाने, सोने, मेटिंग करने और डिफेंड करने की इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज अगर मिलती हैं तो ये व्यक्ति को खुशी बोली जाती है। अभी तक हमने जितना भी पहले डिस्कस किया था, वो जितने भी आप चीजें सोचेंगे आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें आ जाता है। जैसे लोग ज्यादा बड़ा, बड़े से बड़ा काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर इच्छा होती है किसी को इम्प्रेस करने की, तो वो जो है मेटिंग में आ जाता है। व्यक्ति, पति अपनी पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए कार्य करता है, जो युवक है वो युवती को इम्प्रेस करने के लिए कार्य करता है। तो हैप्पीनेस का मतलब इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। बट अगर हम ये देखें तो मनुष्य समाज में नहीं, पशुओं के समाज में भी ये चीज पाई जाती है कि पशु भी पशुओं की भी सोशल लाइफ होती है, वो भी उनके पास भी मित्र होते हैं, जैसे कुछ कुछ वीडियोज हैं। ये दिखाई दे रहा है या इसको अलग से शेयर करना पड़ेगा? शिवम प्रभु कुछ दिखाई दे रहा है?
तो अलग से शेयर करना
नहीं पर उससे नहीं उसको।
जस्ट अ मिनट। अभी दिख रहा है? नहीं, कहाँ पे? इसमें सेविंग का ऑप्शन नहीं आ रहा उसका।
पहले ये एंड स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी फिर दोबारा से। हाँ
वो जो मीडिया प्लेयर जो मैंने खोला था वो इस वो सेव के ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। एनीवे मैं फिर से ट्राई करता हूँ। अभी तो वो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है जहां से दिखाना है। क्या कारण है? कैसे करेंगे सेवन थ्रू? इसमें नहीं ऑप्शन आता है। मैंने क्या किया, वो फोल्डर खोल के अपना एक स्टॉप मतलब मीडिया प्लेयर में चालू किया, परंतु मीडिया प्लेयर का ऑप्शन भी शेयर में नहीं दिखाई दे रहा।
पूरी डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करके होता है,
हाँ
जो भी
वो
स्क्रीन में दिखाएंगे।
दिखाना चाहिए ना, जब हम शेयर स्क्रीन का ऑप्शन करते हैं तो वो स्क्रीन के ऑप्शंस पूछता है ना, वो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है।
स्क्रीन शेयर करके आप स्क्रीन में वो प्ले कर सकते हैं बगल से जाके।
स्क्रीन शेयर, कौन सा स्क्रीन शेयर करूं? पर ठीक है, मैं इसको शेयर किया ना, अभी अभी मैं वीडियो चालू करूंगा तो इस पे नहीं दिखाई देता है, और वो जिस स्क्रीन पे चालू होता है वो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। कोई और ऑप्शन आता है इसमें?
शेयर स्क्रीन करके
पीसी का एक्सेस लेना प्रवृत्ति का, आप एक बार चेक कर लो।
हाँ तो वही किया हुआ है लेकिन मैं दिख नहीं रहा। नहीं हो रहा था इसमें।
आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या?
कैसे कर सकते हैं वो, बता सकते हैं कैसा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं क्या चाहिए?
आपको दिखाई दिया था वीडियो भाई? वो
नहीं प्रभु, वीडियो में
मैंने भी कुछ उसमें है समस्या। तो इसमें मैं जस्ट पीपीटी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें से ही डिस्कस करेंगे। तो अभी इसमें जैसे हमने डिस्कस किया था कि मनुष्य इन चार चीजों में हैप्पीनेस प्राप्त करता है, तो पशु को भी अगर देखा जाए, अगर हैप्पीनेस की बात की जाए, तो पशु को भी, पशुओं की भी सोशल लाइफ होती है। जैसे हम जानते हैं कि चींटियों का समाज होता है, मधुमक्खियों का समाज होता है, मधुमक्खियों की एक रानी मक्खी भी होती है और बाकी लेबर मक्खियां होती हैं। वही सब इस वीडियो में दिया था एक्चुअली, कैसे पशु समाज में सोशल लाइफ पाई जाती है। और एक और वीडियो था जिसमें हमने देखा कि पशुओं के भी फ्रेंड्स होते हैं। एक वीडियो था जिसमें डॉल्फिन मछली में जब कोई नया नई मछली का जन्म होता है, तो जैसे हमारे घर में लोग उसमें आते हैं, जब कोई नए बच्चे का जन्म होता है तो आसपास के लोग आते हैं डांस करने के लिए और बहुत सारी खुशी का डांस होता है। तो उस प्रकार से मछलियों के समाज में डिस्क्राइब किया गया था कि जब कोई नई मछली का जन्म होता है तो डॉल्फिन से और एक और समाज के बीच में कुछ मछलियां खुशी से डांस करती हैं। वो डांस के स्टेप बताए गए थे, पानी के ऊपर वो लोग किस प्रकार से डांस करती हैं, बतख, बतख का डांस भी बताया जाता है। तो इस प्रकार से एनिमल्स का सोशल लाइफ होता है, एनिमल्स के फ्रेंड्स भी होते हैं और फन भी करते हैं, उनकी फैमिली लाइफ भी होती है। इसका एक वीडियो था जिसमें एक भैंसों का ग्रुप जाता है और एक भैंस को अलग से सेव पकड़ लेते हैं, कुछ सेव उसका झुंड उस पर अटैक कर देता है, तो बाकी जो जंगली भैंसे हैं वो उसको बचाने के लिए आती है और सेवों को भगा देती है। तो एनिमल्स के अंदर भी फैमिली लाइफ पाई जाती है, उनके अंदर भी फन होता है, उनके अंदर भी फ्रेंड्स होते हैं। तो एनिमल्स के, एनिमल्स भी इन चार चीजों में तो मजा प्राप्त करते हैं, सुख की प्राप्ति करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। तो ये प्रश्न आता है कि मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? अगर मनुष्य को भी इन चीजों में सुख की प्राप्ति होती है, जानवर को भी इन चीजों में सुख की प्राप्ति होती है, तो फिर मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? आप में से कोई बताना चाहेगा मनुष्य में और जानवरों में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि ये चार चीजें तो मनुष्य जानवर में कॉमन होती हैं, कौन सा चीज होती है जो दोनों में कॉमन नहीं होती? अनम्यूट करके बता सकते हैं। जयदीप आप बताएंगे?
यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। आप हमें सुन पा रहे हैं?
हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ।
ओके ओके ओके। सो बेसिक डिफरेंस तो यही होता है कि ह्यूमन के पास एबिलिटी ऑफ थिंकिंग होती है, मेन मतलब बेसिक डिफरेंस यही होता है।
नहीं, ह्यूमंस के पास एनी थिंकिंग एबिलिटी होती, जानवरों के पास थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती है?
नहीं होती है, बट उस टाइप की इंटेलिजेंस नहीं होती कि जैसा कि हम लोग एक राइट डिसीजन लेने की एक कैपेबिलिटी रखते हैं कि
आप श्योर हैं? आपने जो बिल्ली के बच्चे को देखा होगा, बिल्ली घर में कब आती है किचन में दूध पीने के लिए, जब घर की मालकिन नहीं होती है, देखा होगा ना,
हाँ
तो वो उसके अंदर बुद्धि नहीं होती है, इवन पेड़ के अंदर इतनी बुद्धि होती है, कोई पेड़ की ब्रांच को आप देखेगा बीच में बांध देंगे तो उसकी डाली अलग से निकल के चली जाती है, गांठ के अलग से निकल के चली जाती है।
यस। और एक चीज और होती है कि ह्यूमन ज्यादा एक्सप्रेस ज्यादा करते हैं अपनी थॉट्स फीलिंग को, ऑल्दो जानवर भी करते हैं बट ह्यूमंस में ज्यादा ऐसा देखा जाता है।
ह्यूमंस, या तो ऐसा हो सकता है कि ह्यूमंस ने देखा नहीं कि जानवर कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सोनी कमाता जी ने भी एक लिखा है चैट में कि कम्युनिकेशन अपने थॉट्स बोल कर एक्सप्रेस करते हैं। एक्चुअली जानवर भी अपने थॉट्स बोल के एक्सप्रेस करते हैं, परंतु हम जानवरों की भाषा नहीं समझ पाते हैं। जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो हम सोचते हैं वो भौंक रहे हैं, परंतु जब हम बात करते हैं तो वो भी ये सोचते होंगे कि ये भौंक रहे हैं, क्योंकि हमारी भाषा समान नहीं है। उसका ये मतलब नहीं कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुत्ता कुत्ता से बात करता है, बिल्ली बिल्ली से बात करती है, चिड़िया चिड़िया से बात करती है। एक्सप्रेस तो सभी करते हैं, परंतु तरीका अलग अलग है उसका। इसी तरह से सोचने की शक्ति भी सभी में होती है। खाने पीने के लिए जानवरों की बहुत दिमाग चलता है, आप देखिए जानवर ढूंढ लेते हैं, कुत्ता को देखिए कितना चालाक होता है, कहाँ कहाँ से खाना ढूंढ के निकालना है सब पता रहता है उसको। तो वो बेसिक अंतर नहीं है। और कोई अंतर होता है? ठीक है, देखते हैं आगे, इवेंचुअली इस स्लाइड में आएगा वो। अगर आप लोगों को भी कोई और अंतर समझ में आए तो बताइएगा। तो मनुष्य जानवर में क्या अंतर है, प्रश्न आता है फिर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन। और कई लोग तो मनुष्य को बोलते भी हैं कि मनुष्य को दो पाद पशु, द्विपाद पशु, दो पैरों वाला जानवर बोलते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, इसमें सभी लोग कॉमन। कई बार एक्चुअली जानवर ज्यादा एडवांस है इन सब चीजों में, क्योंकि आप देखो एक हाथी एक टाइम में जितना खाता है उतना मनुष्य हो सकता है 10-15 दिन में खा पाए, 1 महीने में खा पाए। एक बार में हाथी 50 किलो खा लेता है, हम तो एक बार में बहुत कम खा पाते हैं। तो कई बार इन चीजों में हाथी ज्यादा स्ट्रांग होता है, पशु ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एनिमल और ह्यूमन का जो डिफरेंस है वो है जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य। शिवम शिव हरि प्रभु ने, हाँ अच्छा है, ये सही है, जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य। ओके, ये भी एक आंसर है। तो पशु और मनुष्य में अगर कॉमन चीज देखेंगे तो ये चार चीजें कॉमन दिखाई देती हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये चारों चीजें पशु और मनुष्य में कॉमन है तो मनुष्य को भी दो पांव वाला पशु बोला जा सकता है, जैसा कि इस फोटो में लिखा हुआ है। और वास्तविकता में आजकल के सो कॉल्ड कल्चर्ड लोग जो हैं वो दो पांव के पशु जैसे ही भी हैं। जैसे मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ, मेरा मित्र सिंगापुर गया था, मैं कई बार बता चुका ये घटना, तो ये बहुत शॉकिंग घटना है। मेरा मित्र सिंगापुर में मॉस्टेक में जॉब करने के लिए गया था, तो कंपनी में पहले दिन जब उसने ज्वाइनिंग किया तो उसने देखा कि लंच के समय सब लोग बाहर चले जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। और फिर जब वो एक बार दूसरे तीसरे दिन वो देखने जाता है कि सब कहाँ जा रहे हैं, तो कंपनी के बगल में एक दुकान रहती थी, उस दुकान में क्या था कि अलग अलग जानवरों का खून बिकता था पीने के लिए, जूस के जैसे, और सभी लोग जाके अलग अलग जानवर का खून पीते थे। तो उस व्यक्ति को इतना खराब लगा, वो आके उसकी उल्टी होने लगी, बीमार हो गया ये देख के कि कोई मनुष्य कैसे खून पी सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं आजकल लोग इस तरह से मांस खाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि हम कितना पाप कर रहे हैं, और सोचते हैं कुछ पता भी नहीं है। अगर उन्हीं को बोला जाए कि आप मांस होटल में जाके खाने की बजाय एक बार काट के खाइए तो वो काट नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी पशु को मारते समय जो दुख होता है वो दुख वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें वो प्लेट में सजा हुआ देखने आता है, इसलिए हमें वो दुख समझ में ही नहीं आता है कि जब इसको मारा गया होगा चाकू से तो उसको कैसा लगा होगा। परंतु हम केवल अपने जीभ के स्वाद के लिए वो यूज करते हैं और सोचते भी नहीं कि हम कितना पाप कर रहे हैं। तो ऐसे जो सो कॉल्ड कल्चर्ड लोग हैं, देखने में हो सकता है कोट पैंट पहनते हो, परंतु वो वास्तविकता में पशु ही है, पशु के समान ही है। जैसे एक एक्सरसाइज है ये जो हम स्पीसीज इसमें बता रहे हैं, इस स्पीसीज में किस इनकी क्या स्पेशलिटी है ये आपको बताना है। जैसे ये स्पीसीज है, इसका क्या स्पेशलिटी है, ये क्या है एक्चुअली, कोई बता सकता है कि ये कौन सा पक्षी है?
बाज
हाँ, इसका क्या स्पेशल है, इसके अंदर कौन सी स्पेशल कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है?
इसकी नजर सर की
हाँ, इसकी नजर बहुत तेज होती है, बहुत दूर तक देख सकता है। इसकी क्या स्पेशलिटी है, घोड़े की क्या स्पेशल एबिलिटी होती है? अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट करके बता सकते हैं। ओके, शायद ओके, एनीवे ऑनलाइन में कई बार समस्या होती है। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। ये घोड़ा, घोड़ा फास्ट भागता है। इसके बाद कुत्ते की क्षमता होती है सूंघने की क्षमता। तो हर जीव में कुछ ना कुछ स्पेशल चीज दी गई है। उसके बाद हाथी, हाथी जो है वो ज्यादा ज्यादा भोजन ले सकता है, शक्ति ज्यादा होती है। इसके बाद ये भालू ठंडी जगह में रह सकता है, इसका बहुत शरीर में बहुत गर्मी पाई जाती है। इसके बाद कोयल, कोयल बहुत सुंदर गाती है। इसके बाद ये मनुष्य, इसकी कोई स्पेशल क्षमता समझ में नहीं आती, क्योंकि जो इसकी क्षमताएं हैं वो कोई ना कोई जानवर में पाई जाती है, इससे भी अच्छी पाई जाती है, चाहे वो रैशनल थिंकिंग हो चाहे कुछ भी हो, इससे अच्छी पाई जाती है। एक्चुअली जो हम वीडियो नहीं दिखा पाए, वो वीडियो आप देखते तो और भी कन्विंस हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मनुष्य जो है वो टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस होता है, नई नई चीजें सोच सकता है। अभी हमने देखा ही नहीं जानवर, जानवरों के अंदर कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है। तभी आप देखेंगे किस प्रकार से मकड़ी जो है वो जाला बनाती है, उसका पूरा वीडियो था एक्चुअली, कि मकड़ी जो जाला बनाती है, बड़े बड़े सिविल इंजीनियर भी उस तरह से नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मकड़ी जाला बनाती है, उतना अगर कोई व्यक्ति बिल्डिंग बनाएगा तो उसके लिए कई इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, और मकड़ी उसको आनन फानन में बना देती है। उस तरीके का जाला अगर आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करें तो उसका कितना एंगल होना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, परंतु मकड़ी उसको स्पॉन्टेनियस बनाती है। पर चूंकि वो नेचर में होता है इसलिए हम उसको देखते हैं तो नेचुरल है। इसी तरह से है, जैसे नेचर में कुत्ता भौंकता है तो हमें लगता है ये तो सिंपल कुत्ता भौंक रहा है, परंतु अगर कोई मनुष्य सीख जाए कुत्ते के जैसा भौंकना, और जब वो जाके भौंकता है तो लोगों को लगता है कि इसने बहुत बड़ा काम किया, जबकि ऑलरेडी हजारों लाखों कुत्ते भौंक ही गए। तो उस मनुष्य ने अगर ये सीख भी लिया कि कुत्ते जैसा कैसा भौंकना है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नेचर में इतने सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। तो वही होता है कि नेचर के वंडर को हम नहीं देख पाते हैं, जब मनुष्य कुछ करके दिखाता है तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया, परंतु तो वो काम तो नेचर में ऑलरेडी हो रहा है, छोटे छोटे लोग भी वो काम कर पा रहे हैं। इसकी एक कहानी आती है, एक व्यक्ति ने 20 साल तक योग किया, सिद्धि समाधि में गया, 20 साल बाद उसको एक सिद्धि मिली जिससे वो पानी पे चल सकता था। तो जब वो लौट के आता है गांव में तो सब लोग उसको देखने के लिए आते हैं, वो बताता है कि मैं पानी पे चल सकता हूँ इस तरह से, तो सब देखने के लिए आते हैं। और सबके देखते देखते वो एक नदी में जाता है, नदी को पार करके चला जाता है, नदी के ऊपर चलते चलते। और जब वापस लौटता है तो एक व्यक्ति पूछता है, एक्चुअली आपने इतनी छोटी सी चीज के लिए 20 साल बर्बाद कर दिए, ये तो 5 पैसा का जादू है। तो उसने बोला, कैसे 5 पैसे का साथ जादू है? उसने बोला, हमें नदी पार करनी है तो उसके लिए मैं नाव वाले को 5 पैसा दे दूंगा तो मैं नदी पार कर लूंगा, उसके लिए मुझे 20 साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आपने जो सीखा वो तो कोई भी नाव वाला कर सकता है। तो इसी तरह से मॉडर्न चीजें हैं, नेचर में इतने सारे वंडर्स हैं, परंतु उसको हम नहीं देखते हैं, हमें लगता है मनुष्य ने कुछ स्पेशल बना दिया, और हम सोचते हैं मनुष्य बहुत स्पेशल है। वास्तविकता में नेचर से बड़ा साइंटिस्ट कोई भी नहीं है, भौतिक नेचर में ऑलरेडी वो सब चीजें चल रही है। कई बार ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग में जानवरों के अंदर भी रैशनल पावर होती है, बुद्धि होती है। कई बार इन सब चीजों में जानवर मनुष्य से भी अच्छे होते हैं, इन 4 चीजों में। तो ऐसा क्या है, अगर एनिमल्स के अंदर इतने सारे स्किल्स हैं तो कौन सुपीरियर है, मनुष्य सुपीरियर है कि पशु सुपीरियर है? ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य को पशुओं से स्पेशल बनाती है और पशुओं से डिफरेंट बनाती है? जैसे अभी हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज भौतिक संसार के भौतिक सुविधाओं में सब बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, मटेरियल एडवांसमेंट में सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। ये शायद डेट्रॉइट सिटी का सीन है, तो भौतिक सभ्यता बहुत आगे निकल चुकी है। लोगों के पास लग्जूरियस हाउसेस हैं और बिल्डिंग्स हैं इस तरह से, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स और जेट प्लेन्स, मोबाइल, आईफोन, लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस सब का यही मतलब है कि मनुष्य शायद द्विपाद पशु है या कुछ उससे कुछ ऊपर हो सकता है। और अमेजिंग चीज है कि इतने सारे एडवांसमेंट होने के बाद भी आजकल के लोग ज्यादा दुखी हैं, ज्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, ज्यादा चिंतित हैं, ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, ज्यादा डिप्रेस हैं और ज्यादा दुखी हैं। ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस लिए चालू हुआ था? जिससे हम सुख की तलाश कर सकें। परंतु हम देखते हैं संसार में सुख नहीं बढ़ रहा है, संसार में दुख बढ़ता जा रहा है। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ साथ दुख बढ़ रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो गलती है। हमने सुख के लिए ये सब टेक्नोलॉजी खोजी थी, परंतु इस टेक्नोलॉजी से हम सुख की तरफ नहीं जा रहे हैं। आजकल लोग ज्यादा मानसिक पीड़ित होते हैं। ऑफिस में एक बार इस प्रकार से हुआ था कि एक व्यक्ति से किसी दूसरे ने पूछ लिया कि कैसा चल रहा है, तो वो व्यक्ति इतने गुस्से में था कि उसने उसको चाकू मार के मार डाला। उसने बोला अभी मेरा दिमाग खराब था, मुझसे कोई बात नहीं करो, इसलिए उसने मार डाला। लोग इतने डिप्रेस होते हैं, इतने एंग्जाइटी में होते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उसको पता है ऑलरेडी कि मटेरियल टेक्नोलॉजी ने हमें कोई बहुत ऊंची जगह पे नहीं पहुंचाया है। चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी ले लिया जाए, वास्तविकता में जो खुशी का प्रॉमिस दिया जाता है वो खुशी मिलती नहीं है। तो मॉडर्न के डे के लोग ज्यादा डिससेटिस्फाइड है, ज्यादा चिंतित है। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है मनुष्य को खाने सोने और इंजॉय करना और डिफेंड करने में कुछ कुछ लग्जरी दे पाए, परंतु जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ नहीं बताती है। इसलिए आजकल के मानव समाज को आधुनिक पशु समाज बोला जाता है, सोफिस्टिकेटेड एनिमल लाइफ। तो ये प्रश्न बहुत जरूरी है सोचना कि वास्तविकता में मनुष्य और जानवरों में क्या अंतर होता है। कौन सी ऐसी चीज है जो मनुष्य को जानवरों से सुपीरियर बनाती है, मनुष्य को जानवरों से ऊपर पहुंचाती है? महाभारत इस श्लोक को बताता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यमेतत् पशुभिर् नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। इसमें है कि पशुओं और जानवरों में ये चार चीजें कॉमन होती है, आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ये चार चीजें पशुओं में और जानवरों में कॉमन होती है। कौन सी चीज जानवरों में नहीं होती है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। धर्म का मतलब क्या होता है? वास्तविकता में धर्म को लोग सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म का मतलब होता है। धर्म का मतलब कोई भी आध्यात्मिक इंक्वायरी को बोला जाता है। और धर्म शब्द का अगर संस्कृत मतलब देखेंगे तो पदार्थ का ऐसा गुण जो उस पदार्थ के साथ हमेशा रहता है। जैसे आग का धर्म है हीट और लाइट, फायर का जो धर्म है हीट लाइट। इसी तरह से शुगर, शुगर का धर्म है स्वीटनेस, शक्कर का धर्म जो है मिठास, नमक का धर्म है सॉल्टीनेस। तो धर्म ऐसा गुण कहलाता है जो उस पदार्थ के साथ हमेशा रहता है, उसको धर्म बोला जाता है। उसी धर्म की यहाँ पर बात की गई है और वो धर्म आध्यात्मिक होता है। मनुष्यों को जानवरों से ऊपर केवल तभी बोला जा सकता है जब वो आध्यात्मिक इंक्वायरी करें, भगवत चेतना को प्राप्त करें और भगवान की सेवा करना सीखें। नहीं तो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। जो धर्म को नहीं मानते हैं वो द्विपाद पशु के समान है। महाभारत में एक और जगह पे आता है, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्म ते मृत्यु लोके भूविभाग भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो उसमें आता है ये साम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो तपस्या नहीं कर सकता है, मतलब आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकता है, न तपो न ज्ञानम, जिसको ज्ञान नहीं है और ध्यान जो नहीं कर सकता है, ना उसके अंदर किसी दूसरे के लिए दया होती है ना क्षमा होती है, वो एक्चुअली इस धरती पे भाव के समान है और मनुष्य के रूप में पशु के समान है, ये बताता है। तो मनुष्य जीवन में हम इंक्वायर कर सकते हैं, पशु केवल इन चार चीजों के बारे में ही सोच सकते हैं। आप में से जो बता रहे थे ना, मनुष्य के अंदर ज्यादा रैशनल होते हैं, पशुओं के अंदर दिमाग होता है परंतु उनका दिमाग लिमिटेड होता है कि वो केवल इन चार चीजों में उनका दिमाग लगता है। जबकि मनुष्य ये सोच सकता है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और जीवन और मृत्यु क्यों होता है, उसके पीछे कुछ और चीज है क्या। ये दिमाग केवल मनुष्य का चलता है, पशु का नहीं चलता है। तो स्पिरिचुअल इंक्वायरी जो है वो मनुष्य का मेन डिफरेंस है पशु के साथ, जिसके कारण मनुष्य को सुपीरियर बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में, आपने ये नहीं देखा होगा कि पशु लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, कि आप कभी जन्माष्टमी पे मंदिर में दर्शन करने आए और आपने देखा कि आपके बगल में कुत्ता लगा है, गाय लगी है, ये सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। नहीं देखा होगा कभी, क्योंकि पशुओं के अंदर आध्यात्मिक इंक्वायरी की कोई इच्छा नहीं होती, उनके अंदर सेटिंग ही नहीं होती है। इसलिए मनुष्य जन्म स्पेशल माना जाता है, क्योंकि मनुष्य जन्म में हम आध्यात्मिक इंक्वायरी कर सकते हैं, जन्म मृत्यु और जन्म मृत्यु के बियॉन्ड क्या है उसको सोच सकते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म जन्म को पशु जन्म से स्पेशल माना जाता है। ह्यूमन बीइंग्स के पास हायर इंटेलिजेंस दिया जाता है, जिससे कि वो अपने दुखों का कारण समझ सकें, जिंदगी के लक्ष्य को समझ सकें और अपने जीवन को भगवान के साथ हार्मोनाइज कर सके और खुशी की प्राप्ति कर सके। तो ये मनुष्य मनुष्य जीवन को हायर इंटेलिजेंस इसके लिए दिया जाता है। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि मनुष्य आजकल इस इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं करता है। ज्यादातर लोग केवल यही सोचते हैं पैसे कमाना है और मौज करना है और जिंदगी खत्म करना है, और इस तरह से रह के जीवन खत्म करके चले जाते हैं। मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य को समझ ही नहीं पाते। तो जब मनुष्य जीवन हमें मिलता है तो हमारी क्या चॉइस है उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर हम आध्यात्मिक इंक्वायरी करते हैं तो हम ऊंची लाइफ की तरफ जाएंगे, और अगर हम नहीं करते हैं तो हम पशु जीवन की तरफ चले जाएंगे, लोअर फॉर्म्स में चले जाएंगे। तो ये मनुष्य के पास रीजनिंग पावर है ये इस क्वेश्चन को करने के, कि मैं क्यों सफर कर रहा हूँ और जीवन का लक्ष्य क्या है। ये दो क्वेश्चन अगर किसी मनुष्य को आते हैं, दैट मीन्स वो मनुष्य जो है वो आध्यात्मिक रूप से इंक्वायरी करना चाहता है। अभी हम देखेंगे पहला, हम क्यों सफर करते हैं, क्यों हमें दुख आते हैं। जैसे इसके लिए एक प्रश्न है कि वास्तविक समस्याएं क्या कहलाती है। कोई भी समस्या को वास्तविक समस्या कब बोलते हैं, जब वो इन तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो। ऐसी समस्या जो सभी के लिए कॉमन है, कोई उसको नहीं चाहता है, कोई उसको अवॉइड भी नहीं कर सकता है। सभी को वो समस्या होती है, ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक, हर व्यक्ति को, हर जानवर को, सबको वो समस्या होती है। कोई उसको चाहता नहीं है, कोई उसको अवॉइड नहीं कर सकता है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो संसार की सारी समस्याएं इस कैटेगरी में नहीं आती हैं, जबकि ये रियल प्रॉब्लम्स हैं मनुष्य जीवन की, सभी के जीवन की, हर जीवन की ये रियल प्रॉब्लम्स हैं। ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे इसके आंसर में, कि महंगाई की समस्या, करप्शन की समस्या, ये सारी जो समस्याएं हैं ये वास्तविकता में रियल प्रॉब्लम्स नहीं है। आप में से कोई बताना चाहेगा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो इन तीन क्राइटेरिया को पूरा करती है। सभी के लिए कॉमन है, कोई उसको चाहता नहीं है, परंतु कोई उसको रोक भी नहीं सकता, अवॉइड भी नहीं कर सकता। अगर कोई को कुछ आंसर याद आए तो अनम्यूट करके बता सकते हैं। अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।
जैसे करेंट सिचुएशन में कोविड चल रहा है।
हाँ, कोविड जो है वो तीनों को, तीनों के लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, कोई इसको नहीं चाहता, कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो कोविड का इन जनरल हम ले सकते हैं बीमारी, कोई भी बीमारी हो वो इन तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। सही आंसर है। इसके अलावा एक और चीज है। हाँ, चैट चैट बॉक्स में कुछ आया है। हाँ, इसके अलावा है बुढ़ापा। सभी लोग, पूरा इंडस्ट्री जो हेयर इंडस्ट्री इसीलिए चल रहा है क्योंकि लोग बूढ़े होना नहीं चाहते, हेयर में कलर करना चाहते हैं। 70 साल की उम्र में भी व्यक्ति एकदम काले बाल रखना चाहता है और प्लास्टिक सर्जरी करता है जिससे कि बुढ़ापा नहीं आए। तो बुढ़ापा एक ऐसी समस्या है जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। तीसरी समस्या है मृत्यु। लोग इतना डरते हैं कि नाम भी लेना नहीं चाहते। चौथी समस्या है जन्म। जन्म को हालांकि लोग समस्या नहीं समझते, परंतु जन्म भी एक समस्या है, क्योंकि अगर जन्म जन्म से ही चक्र चालू होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चक्र एक साथ ही चलता है। तो जन्म भी एक समस्या है, क्योंकि माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटका रहना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को हम उल्टा लटका दें 9 महीने तक तो व्यक्ति की हालत खराब हो जाएगी। उसी तरह से हम माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं। वो भी एक वीडियो आता है, वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्क नेक्स्ट क्लास में हम वीडियोस को इस तरह से कंपाइल करेंगे कि उसको हम शो कर सके। हम हमेशा यंग रहना चाहते हैं, परंतु हम बहुत जल्दी ओल्ड हो जाते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। इसीलिए लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज इसीलिए चल रहा है। लोग अपनी मेमोरीज भी बना के रखते हैं, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट में जब वो बुद्धि हो जाएंगे तो वो संतुष्ट रहेंगे कि एटलीस्ट वो पहले जवान थे, कुछ किसी समय उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया था। क्योंकि शरीर में से आत्मा हमेशा बदलती आत्मा हमेशा शरीर शरीर की अवस्थाएं हमेशा बदलती जाती हैं। हमारा शरीर पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, यूथ होता है, फिर ओल्ड एज होता है, बाद में मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी तरह से हम हेल्दी रहना चाहते हैं, परंतु हमारी इच्छा के बिना अलग अलग बीमारियां हमें होती जाती हैं। व्यक्ति का बहुत सारा समय हॉस्पिटल में निकलता है या बीमारियों में निकलता है, और इससे पता चलता है कि ये चार चीजें जो हैं, ये संसार की वास्तविक समस्याएं हैं, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। तो इसमें बर्थ एक जो समस्या है उसको हम जस्ट ट्राई करते हैं। उसका वीडियो एक यूट्यूब पे भी उसका वीडियो है, वो हम देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक तो लंबा है, इसको ये हम अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। बट ये वाला वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है हैप्पी बर्थडे टू यू बहुत अच्छा लगता है कि बर्थ बहुत अच्छा है, परंतु बर्थ की जो मिजरी है वो हमें इस वीडियो में दिखाई देगी। आई होप अभी ऑप्शन आना चाहिए। ये दिखाई दे रहा है ओम?
यस प्रभु।
श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में बताया गया है। किस प्रकार से जैसा आत्मा ने पहले कार्य किया है उसके आधार पे वो आत्मा एक स्त्री के गर्भ में सीमेन के द्वारा उसको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि उसको पर्टिकुलर शरीर मिल सके। और पहले नाइट में स्पर्म और ओवम मिक्स होते हैं, पांचवें नाइट में बबल बनता है फर्मेंट होके, और दसवें नाइट में उसमें से प्लूम बनता है। उसके बाद ये प्लूम धीरे धीरे मास में बदलता है। पहले महीने में सिर बनता है, दूसरे महीने में उसके हाथ पैर और शरीर के दूसरे हिस्से बनते हैं, तीसरे महीने में फिंगर्स, अंगूठे, नाखून ये सब बनते हैं, फिर धीरे धीरे आंख, नाक, कान, बाल ये सब बनना चालू होते हैं। चौथे महीने में सात धातु उसके उसके अंदर बनते हैं। पांचवें महीने में उसको भूख प्यास लगना चालू हो जाती है। ये आत्मा नए शरीर में जो आई है उसका डिस्क्रिप्शन है। इसमें आप देखेंगे ये मां के गर्भ में उल्टी लटकी हुई है, सातवें महीने में उसके अंदर चेतना भी आ जाती है। उसकी माँ से उसको न्यूट्रिशन प्राप्त होता है और माँ के गर्भ में रहता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया रहते हैं। कभी माँ अगर बहुत खट्टा ये सब खाती है तो बच्चे का शरीर बहुत परेशान होता है। और माँ के गर्भ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी उस बॉडी को बार बार काटते हैं। उस समय बच्चा बहुत तड़पता है अपने इसके कारण, दुख के कारण। श्रीमद भागवतम का डिस्क्रिप्शन है कि जैसे पिंडिरे में कोई खड़ा होता है और उल्टा लटका हुआ है, उस तरह से ये बच्चा माँ के गर्भ में लटका रहता है। अगर बच्चा सौभाग्यशाली है तो उसको अपने पिछले 100 जन्म में याद आ जाते हैं और वो बहुत दुख मनाता है कि मैंने भगवान की सेवा क्यों नहीं की। उसका बैक और उसकी नेक धनुष के जैसा खिंचा रहता है। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं एक खराब आत्मा, कब मैं इससे बाहर निकलूंगा। उस समय वो आत्मा भगवान को प्रार्थना करती है इस प्रकार से कि मैं भगवान का शरण लेता हूं क्योंकि वो मुझे सारे दुखों से बचा सकते हैं, उनसे मैंने ये शरीर प्राप्त किया है, जीवन की ये स्थिति प्राप्त की है जो कि मेरे पुराने पाप कर्मों के आधार पर मुझे मिली है। और मैं आत्मा अभी अपने कर्मों के कारण इस शरीर में बंधा हुआ हूं, माँ के गर्भ में इस प्रकार से रह रहा हूं माया के प्रभाव से। मैं आपकी शरण लेता हूं क्योंकि आप अनलिमिटेड हैं। इस प्रकार से वो भगवान को प्रार्थना करता रहता है कि मैं आध्यात्मिक हूं परंतु मैं आपसे बिछुड़ गया हूं, इसलिए मैंने अपनी इंद्रियों को भी गलत दिशा में लगाया था। माँ के अंदर जो अग्नि रहती है जठराग्नि, उससे बच्चा जलता रहता है। प्रार्थना करता रहता है ऐसा करते करते जब वो बाहर आता है बाहर आके माया शक्ति के प्रभाव में वो सब भूल जाता है। भगवान से उसने अंदर क्या प्रार्थना की थी वो सब कुछ वो भूल जाता है। ये वीडियो क्वाइट फ्राइटनिंग भी है, कई बार लोग इसको देख के डर जाते हैं, बट गुड वीडियो। इस तरीके का केवल ये अभी हमने जन्म का देखा है, इसी तरह से बाकी तीन समस्याएं हैं, जन्म के बाद मृत्यु, फिर जरा और व्याधि। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ऑलरेडी 8 बजने वाला है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक जो है वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये एक सेक्शन है, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो आता है नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो शिवम प्रभु क्या करें, एंड करें?
जी प्रभु,
आपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर किया है, तो जो भी नए जुड़े हैं और ज्वाइन कर सकते
हैं। ओके, जो चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है, ग्रुप का नाम क्या रखा है?
वैदिक विजडम।
वैदिक विजडम, ओके।
तो और आई थिंक हीना माता जी के कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो अगर वो इंट्रोड्यूस करवाते तो बहुत अच्छा।
हाँ, करा सकते हैं, ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वैदिक विजडम व्हाट्सएप ग्रुप। तो इसमें रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको, क्लासेस के और जो भी है।
ठीक है,
एंड कर सकते। ओके, नेक्स्ट वीक इसी टाइम।